राधा रसिक श्याम राधा बिहारी, गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी, गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी, गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी, गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी, सब लोग पुकारो प्रेम से पुकारो, गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी, गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी, गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। Rama Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare Hare Hare
ताई गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे श्री वृंदावन धाम की महिमा हम कई दिन से चर्चा कर रहे हैं उसकी और ये भी हम उसका सार की भी चर्चा कर रहे हैं जो सार का नाम है सेवा। तो जब तक ये सेवा भाव का सार हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करता है तब तक हम भी परिणाम कारक रीति से इस धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। शरीर से हमारा जन्म भी हो, शरीर से हम बाहर से यहाँ प्रवेश भी करें, लेकिन जब तक सेवा का ये सार हमारे हृदय में नहीं प्रवेश करता है, तब तक हमारा धाम में रहकर भी धाम में नहीं रहने के बराबर है। तो सेवा की उत्कटता जो है कि सेवा हम कैसे निरपेक्ष भाव से करना चाहिए। हमारे अंदर बहुत अपेक्षाएं होती है जब हम कुछ करते हैं, कुछ भी करते हैं इस दुनिया में, तो हमें क्या मिलेगा इसके बारे में पहला विचार करते हैं। मंदिर में भी सेवा करेंगे, या कैंप में भी सेवा करेंगे, या घर में सेवा करेंगे, कहीं भी कुछ भी करेंगे, किसी के लिए कुछ भी करेंगे, तो सबसे पहले हमारे विचार मन में आता है कि हमें क्या मिलेगा। और कभी कभी हम बिना लाभ के भी अगर कोई सेवा करते हैं तो भी इतना लाभ तो हम चाहते हैं कि कम से कम आप हमें थैंक यू बोले, है ना, कि हम कुछ नहीं चाहते आपसे, तो कम से कम आपको थैंक यू बोलना चाहिए था, हमने आपके लिए ये सेवा किया। ये तो मैंने एक तो साधारण उदाहरण दिया आपको क्या अपेक्षा करते हैं हम लोग, लेकिन बहुत सारी अपेक्षा होती है हमारी। जैसे हमको ऐसे रहने की व्यवस्था चाहिए, वैसे होना चाहिए, सेवा में हमारे साथ में ये नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति होना चाहिए, इसके पास हमारा सेवा जमता नहीं है, ये लीडर अच्छा नहीं है, हमको दूसरा लीडर होना चाहिए, प्रसाद में हमको ये आइटम पसंद आता है, ये नहीं मिल रहा है, साउथ इंडियन में हमको राइस नहीं मिल रहा है, नॉर्थ इंडिया हमको रोटी नहीं मिल रही है, और प्रसाद में कोई स्वाद नहीं आ रहा है इसमें, पहले कितना अच्छा प्रसाद हुआ करता था। कई प्रकार की अपेक्षाएं होती है, और जब तक ये अपेक्षाएं हमारे मन में है तब तक हमारे सेवा में त्रुटि है। सेवा जो है वो बहुत जल्दी बड़ी अच्छी गति से बड़े अच्छे परिणाम के साथ में गतिमान रूप में प्रवेश कर सकती है भगवान के पास, भगवान के हृदय में, जब वो पूर्णता निरपेक्ष हो, निस्वार्थ हो, निष्प्रू हो, और उस सेवा में उत्कटता होनी चाहिए, इंटेंसिटी। केवल हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे सेवा कर लिया, लेकिन एक सेवा में एक उत्कट भाव होता है जो भगवान को बड़ा पसंद है, तो उस उत्कटता के उस उत्कटता कह सकते हैं उसको, उत्सुकता कह सकते हैं, हाँ, ईगरनेस। रूप गोस्वामी जी बताते हैं अपने भक्तिरसामृत ग्रंथ में कि जो उत्साह जो है या उत्सुकता, ईगरनेस, ये हमारे भक्ति की कीमत है, और भक्त जीवित है इसका भी ये लक्षण है। अगर हमारे भक्त मन के अंदर भगवान की भक्ति पूर्ण सेवा करने के लिए उत्कटता नहीं है, उत्सुकता नहीं है, ईगरनेस नहीं है, तो हम जीवित रहकर भी मुर्दा है स्पिरिचुअली, हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि से हम जीवित नहीं है। तो ये उत्सुकता होना ये भक्त की जान है, जैसे हम कहते हैं लाइफ लाइन, बॉम्बे की लाइफ लाइन है रेलवे। हमारी भक्ति की लाइफ लाइन है उत्सुकता। जब तक ये उत्सुकता बनी हुई है उसको हम बनाए रखें, तब तक हमारे मन में कभी भी वो जो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, उदासी कभी भी नहीं आएगी। भक्त के लिए उदासी होना यानी कि माया हमारे पर हावी हो रही है, उदास होना ये एक माया के प्रभाव का लक्षण है, और उदासी का उल्टा गुण जो है वो उत्सुकता है। हमेशा उत्सुक रहना कि अभी क्या करूं, किम करह। एक भगवान के दासियों के ग्रुप में एक ग्रुप है, इसका नाम है किंकरी, प्रभु जी उनके लिए किंकर और माता जी उनके लिए किंकरी। किंकरी मतलब उसका नाम है किम करह, क्या करूं, व्हाट टू डू, उसके मन को लेके प्रश्न होता है अभी क्या करूं। केवल अपने इष्ट के संतुष्टि के लिए अभी क्या करूं, अभी इस समय मेरी आज की स्थिति में, आज के बाहर के अंदर के वातावरण में किस प्रकार से मैं सर्व उत्कृष्ट पद्धति से सेवा कर सकता हूं, हाउ कैन आई सर्व इन द गिवन सिचुएशन इन द बेस्ट पॉसिबल वे, वो किंकरी का भाव रहता है। तो वो किंकरी भाव जो है ये भगवान को सबसे भाता है, सबसे अधिक। और किंकरी वैसे सबसे निचला ग्रुप माना गया है, उसके ऊपर सहचरी है, उसके ऊपर सखी है, उसके ऊपर प्रिय नर्म सखी है, उसके अंदर अष्ट सखी है, उसके अंदर बहुत सारे ग्रेडेशन है, लेकिन सबसे अधिक भगवान का ध्यान किस पर है? किंकरी ऊपर। क्योंकि तो किंकरी जो है वो कभी भी ये भी नहीं चाहती कि मैं जिसकी सेवा कर रही हूं उसको प्रत्यक्ष सेवा करूं, कि मैंने तो माला बनाई है फूलों की, मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि मैं वो माला जाके कृष्ण के गले में स्वयं अपने हाथों से पहनूं और वो मुझे देखेंगे और मैं उन्हें देखूंगी, ये भी अपेक्षा नहीं करती वो। इतना श्रेष्ठ भाव ये, वो ये सोचती है कि मैं केवल दासों की दासी हूं, दास दास अनुदासी हूं, दास दास अनुदास हूं, मेरा काम केवल जो योजना बनाई गई है भगवान की सेवा के लिए अन्य वरिष्ठ भक्तों के नेतृत्व में, उसको केवल करना है मुझे बस। अगर मुझे कहा गया कि वहां से फूल बिन के हरे रंग के पीले रंग के यहां लेके आना है, बस उतना ही मुझे करना है। फिर उसके आगे किसी को माला बनानी है, किसी को फिर माला बना के देनी है, फिर ललिता जी उसको भगवान को पहनाएगी। किसी को मन में ईर्ष्या नहीं होती है, अरे हमने फूल बिने, हमने इतना कष्ट किया, कांटों में गए, इधर देखो कितना जख्म हो गया है, हाँ इतना टाइम लगा, धूप में थी, गर्मी में दब पड़ रहा था, कष्ट हो रहा था, फिर हमने इतने सारे फूल लेके आए, तो हमारे को कुछ कोई रिकग्निशन है ही नहीं, हमारे लिए कोई ऐसा सेवा का मेवा है ही नहीं कुछ। हाँ ऐसे भगवान के धाम में, भगवान के शुद्ध भक्त वृंद में कोई नहीं सोचता है, ऐसे केवल हम और आप सोचते हैं कि हमने इतना सब किया, हमारे लिए कोई थैंक यू भी नहीं बोला, कोई नोटिस भी नहीं किया, अरे महाराज आए यात्रा में अपने आई कैंप में और हमको उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, हम तो वहीं थे, हाँ प्रभु जी हमारे पास आए लेकिन हमको निगलेक्ट किया प्रभु जी ने, सीधे हमारे आगे से निकल गए, बाजू वाले को इंट्रोड्यूस किया, मुझे इंट्रोड्यूस नहीं किया। ऐसे होता है, वो हमारी स्थिति इतनी विकट होती है ना, लोग सोचते हैं कि हम उनके इतने पास रहते हैं, हमारे हाथ में सब कुछ है, महाराज भी हमारे कंट्रोल में है, ऐसा उनको लगता है, लेकिन वो जानते नहीं कि हम उनके सेवक हैं, जो वो चाहते हैं, जो उनके अनुकूल है, जैसा उनका भाव है, वैसे हमको उनका सेवा करना है। तो 1001 लोगों में से अगर 2 लोग अगर रह गए तो हमारे तरफ से अपराध होता है और हमको गाली पड़ती है उसके लिए। तो सेवा इस भाव से करना चाहिए कि मुझे नोटिस भी अगर नहीं किया जाए तो भी चलेगा, लेकिन मैं सेवा करना चाहता हूँ। क्योंकि ठाकुर भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, उन्होंने एक सुंदर वाक्य कहा था, वो कहते थे कि डू नॉट ट्राई टू सी कृष्णा, ट्राई टू वर्क इन सच अ वे दैट कृष्णा विल सी यू। ये हमारे लिए बहुत ही क्या कहते हैं, दिलासा देने वाला वाक्य है। डोंट वरी, अगर आपको प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन नहीं भी हुआ ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जब तक हमारे हाथ में सेवा है तब तक हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सेवा जिसकी हम करते हैं सच्चे दिल से, उस प्रकार से, तो जो सेव्य है, जिसकी सेवा हो रही है, वो अपना स्थान छोड़ के सेवा करने के वाले के पास में आता है, दृश्य रूप में या अदृश्य रूप में, लेकिन आता जरूर है। जैसे हम हमेशा उदाहरण देते हैं, समझो आपको प्रधानमंत्री को मिलना है, आप में से कितने लोगों को मिलने की इच्छा है प्रधानमंत्री को? अरे एक का भी हाथ ऊपर नहीं। कैसे नागरिक हो आप भारत देश के? आप कोई भी भारत के प्रधानमंत्री को देखना नहीं चाहते, कैसे नागरिक हो आप? लेकिन समझो माधव मिश्रा प्रभु को प्रधानमंत्री को मिलना है, सोच लो कि आपको मिलना है, हाँ कितना कठिन बात है, मानते जानते हो आप, कितने साल योजना बनानी पड़ेगी आपको, कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए, इतने लोगों का लाइन, आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा, कैसे अपॉइंटमेंट लेना है उनका, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हो सकता है वो जिंदगी भर सपने ही देखते रहेंगे कि हम प्रधानमंत्री को मिलेंगे, अंत समय तक भी बोलेंगे हमारा अंतिम इच्छा क्या है, प्रधानमंत्री को मिलना था, नहीं मिल पाए। लेकिन समझो प्रधानमंत्री के मन में ऐसा विचार आया कि मुझे माधव मिश्रा को मिलना है, तो कैसा होगा? एकदम आसानी से, तुरंत, क्योंकि व्यक्ति सक्षम है, उसके पास अधिकार है, उसकी जैसी इच्छा है वैसी उसकी इच्छा पूरी करने की शक्ति भी उसके अंदर है, ऐसा नहीं कि वो केवल इच्छा ही करता है, सपने देखते रहता है, उसके पास अधिकार है, पावर है उसके पास। तो वैसे हम अगर भगवान को मिलना चाहेंगे तो क्या हमारी पॉसिबिलिटी है? लेकिन ठाकुर भक्ति सुदान जी ने कहा है कैसी सेवा करो, कैसी निरपेक्ष भाव से, उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं रखना है उसके अंदर, कि कम से कम मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं, मुझे एक रोटी खिलाओ दिन में, लेकिन महाराज जब आएंगे ना तो उनकी मुलाकात जरूर कराओ मेरे साथ, ऐसे भी अपेक्षा रखनी नहीं है। हाँ, निरपेक्ष भाव मतलब कैसे, उन्होंने कृपा कटाक्ष दिया हमें तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो भी अच्छी बात है, हम उनकी सेवा में हैं, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि जब हम सेवा कर रहे हैं तो हमारा कनेक्शन बना हुआ है ऑलरेडी, हम सेवा गुरु जी के माध्यम से ही करते हैं, उनके निर्देश में उनके कृपा छत्र के छाया में हम सेवा करते रहते हैं, तो जब हम सेवा कर रहे हैं तो हमारा उनका कनेक्शन बना हुआ है, चाहे हमको उसका नोटिस सर्टिफिकेट रिसीट ना मिले फिर भी हमको विश्वास होना चाहिए। इसलिए हमको सबको बरसाना आई कैंप में सेवा ऐसे करनी है कि ठाकुर जी स्वयं आपको देखने को आ जाए, जब देखने को आ जाए तो आपको वो दिखेंगे नहीं, ये भी ध्यान में रखना लेकिन देखने जरूर आ रहे हैं, जब आप निष्प्रभ भाव से निरपेक्ष भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं। तो मुझे बांके बिहारी की कथा याद आती है, हाँ, कि उत्सुकता सेवा में कैसे होनी चाहिए। एक बड़ा बूढ़ा गांव का आदमी था, उसको किसी ने बताया कि अभी जीवन में अंत में अभी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। तो उसके गांव में सरपंच था, गांव का बॉस, तो अपने नौकरी छोड़ के गांव के सरपंच की सेवा करना आरंभ किया उसने। कुछ दिन बाद में कुछ अधिकारी आए डिस्ट्रिक्ट से, जिला से, तो वो देख रहा है सरपंच वो उनके अधिकारी की सेवा कर रहे हैं, तो सरपंच की सेवा छोड़ के उसने अधिकारी की सेवा ले ली। उसके बाद में देखा कि कोई मंत्री आए शहर से, तो वो अधिकारी उनकी सेवा में लगे, बोले इससे बड़ा भी मंत्री है तो मंत्री की सेवा में लग गए। कुछ दिन बाद में मुख्यमंत्री आए, तो सारे मंत्रीगण जो है उनकी सेवा में लगे, तो मंत्री की सेवा कर छोड़ के मुख्यमंत्री की सेवा में लग गए। ऐसे करते 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 प्रधानमंत्री तक पहुंचे, प्रधानमंत्री की सेवा कर रहे हैं तो लग रहा है कि राजा आए तो प्रधानमंत्री भी राजा की सेवा में लग गए, सबको छोड़कर राजा की सेवा में लग गए। बहुत देर तक राजा की सेवा की, क्योंकि राजा के ऊपर और कोई था नहीं, दिन रात राजा की सेवा कर रहे हैं, दिन बीतते जा रहे हैं, व्यक्ति और बूढ़े होते जा रहे हैं। एक दिन देखा अचानक रात को जग गए, सेवा समाप्त करके सो गए थे, रात को जग गए, देखा कि राजा राजमुकुट राजवस्त्र राज अलंकार और यहां तक कि जूता भी छोड़कर सब कुछ निकालकर नंगे पैर अकेले जंगल में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, तो मैं तो उनका सेवक हूं, मुझे जाना चाहिए उनकी सेवा करने के लिए। तो तुम तुरंत उठे और बोले मैं सो क्यों रहा हूं, मेरे मालिक स्वामी तो जा रहे हैं अकेले, कुछ जरूरत होगी उनको तो हमें सेवा करनी पड़ेगी। तो भागे उनके पीछे 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 जा रहे हैं, राजा आगे आगे जा रहे हैं, तो भरे घने जंगल में जाते हैं, वृंदावन में जा रहे हैं घने जंगल में, और वहां जाकर श्री बांके बिहारी लाल के सेवा कर रहे हैं। रात को बड़े मग्न होकर दीन होकर, ऐसा लगता नहीं कि राजा है, इतने दीन भाव से पुकार रहे उनको, भजन कर रहे उनका नाम ले रहे हैं, बड़े प्रभावित हो गए, अरे राजा के ऊपर भी कोई है। तभी तक वो बहुत अवस्था उनकी बुरी अवस्था हो गई थी उस व्यक्ति की, तो राजा को पूछा कि कौन है ये, ये सृष्टि के मालिक है, मैं तो इस देश का राजा हूं, वो तो ऐसे अनेक देश है और ये देश अनेक देश जो है वो एक लोक में है, ऐसे अनेक लोग भी है, हाँ, और ऐसे अनेक लोग एक ब्रह्मांड में रहते हैं और ऐसे अनेक ब्रह्मांड भी है और वो अनेक ब्रह्मांडों के ये मालिक हैं, सब उनकी तरफ से आता है, निर्माण उनकी तरफ से होता है। अच्छा, थोड़ा वर्णन किया, उन्होंने सुनाया कि मैं तो नाम के लिए राजा हूं, मर जाऊंगा तो राजा पद खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सही राजा है, ये कभी इनका राजा होने का जो स्थिति है वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो चिरंतन राजा है, हम तो कुछ समय के लिए राजा हैं, बाद में हमारे बेटा राजा बनेंगे फिर हम रिटायर हो जाएंगे। तो तुरंत उन्होंने राजा की परमिशन ली, अनुमति ली और बांके बिहारी की सेवा करने के लिए उन्होंने परमिशन मांगा उनसे। राजा बड़ा भक्त था भगवान का, उन्होंने कहा सही बात है, आप बहुत बुद्धिमान और जानकार व्यक्ति हो, कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख नहीं होगा, मैं आपको अपनी सेवा से रिहा करता हूँ, जाओ बांके बिहारी की सेवा में जाओ। उस समय रात के बहुत देर हो चुकी थी और बांके बिहारी के मंदिर में ये जब वार्तालाप हो रहा था और राजा चले गए और बांके बिहारी का मंदिर बंद होने का समय आया और पुजारी लोग उसको बंद कर रहे थे, तो ये भागवा के गए, पुजारी महाराज हमको इनकी सेवा करनी है, अरे कल सवेरे आ जाओ, मंदिर बंद हो रहा है अभी। सिंपल है ना, अभी आप शयन हो रहा है मंदिर का, भगवान का मंदिर भी लॉक कर रहे हैं। नहीं नहीं मुझे पता नहीं मैं कल तक जी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मैं इतनी बुरी अवस्था है मेरी, कृपा करके मुझे अभी सेवा, अभी सेवा दे दो। बोले कह दिया ना आपको कल आ जाओ, कल कुछ ना कुछ सेवा मिल जाएगा, कल आ जाओ सवेरे, जाओ सो जाओ अभी। बोले नहीं नहीं मुझे अभी कल सोने का मूड नहीं है, मुझे अभी तुरंत बांकी बिहारी की सेवा में लगना है, ये उत्सुकता है। हाँ तो उनको लगा कि पागल व्यक्ति तो नहीं है, इतना कह रहा है समझ में नहीं आ रहा उसको। नहीं नहीं मैं पाँव पड़ रहा हूँ आपके, आपके हाथ जोड़ता हूँ मैं, कुछ करो मुझे सेवा दो। तो वो अपने आपस में बोलने लगे कि थोड़ा पागल लगता है आदमी ये। बोले कोई बात नहीं, हम लॉक करके जाते हैं, यहाँ खड़े रहो और इस दरवाजे से किसी को आने मत देना और जाने मत देना। दरवाजे को लॉक कर दिया उन्होंने और बोल रहे कि इसके यहाँ से बाहर से कोई अंदर ना जाने पाए और अंदर से कोई बाहर ना आने पाए, ये आपकी सेवा है, सुबह तक लगे रहो, सुबह आके अगली सेवा देंगे। बोला कोई बात नहीं, तुरंत खड़ा हो गया उधर, श्रद्धा है ना उसको। तो सब चले गए, ठंड का मौसम था, कोई है नहीं उधर, सब लोग चले गए, एकदम सन्नाटा हो गया, सुनसान हो गया। और कुछ देर बाद में वहां के बिहारी जी दरवाजे से बाहर आए, शॉल वॉल पहन के, हाँ श्रृंगार करके। तो उन्होंने बांकी बारी को देखा तो नहीं ना, तो बोले अरे ये कौन है आप, मुझे आदेश है बांकी बारी की सेवा में हूँ, आदेश है कि इस दरवाजे से कोई अंदर नहीं जाएगा और बाहर भी नहीं जाएगा, बाहर से अंदर नहीं जाएगा, अंदर से बाहर नहीं जाएगा, आप कौन हो? कहते हम स्वयं बांकी बिहारी। अच्छा, तुरंत दंडवत प्रणाम करते हैं। अरे लेकिन कहाँ जा रहे हैं आप? तो रात को जाता हूँ मैं रास खेलने के लिए गोपियों के साथ, चलो मेरे साथ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, चलो आप मेरे साथ चलो। जाते हैं, चले चले जाते हैं, और फिर जाते हैं और बोलते हैं आप यहाँ रुको, अभी मैं निकुंज में प्रवेश कर रहा हूँ, सब गोपियों के साथ संग करूँगा अभी। तो खड़े हो गए पहरेदार के, यहाँ खड़े रहो और किसी को अंदर आने मत देना। तो अंदर चले गए, बहुत सखियों के साथ में उनका नृत्य हुआ, रास नृत्य हुआ, प्रेम का आदान प्रदान हुआ, ये सब सुन रहे बाहर से, कुछ देख नहीं पा रहे। रात भर चला ये सब लीला उनका। सवेरे कुछ 3-3:30 के आसपास, हमारे मतलब अंडरस्टैंडिंग के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के आसपास वो वापस आए, बोले चलो हो गया हमारा काम। फिर सब दोनों लौट के आए, फिर बांकी बिहारी जी के मंदिर के दरवाजे जहाँ लॉक करके रखा था वहाँ पर आए और उन्हें कहा कि अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, तुम खड़े रहो यहाँ पर। तब तक तो बेचारा बूढ़ा जो है वो ठंड से कांप रहा था। तो बांकी बिहारी देखते हैं अरे तो कांप रहा है, तो अपनी शाल उतारते हैं और उस पर लगाते हैं, मतलब शाल पहनो बाद में फिर अच्छा लगेगा। तो शाल उसको देकर वो अंदर चले जाते हैं, दरवाजा लॉक है, उसके अंदर ठाकुर जी प्रवेश करके अंदर चले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद में पुजारी आते हैं मंगला के लिए, मंगला तो वृंदावन में कभी 3:30 को होती है, कृष्ण बलराम नंदगांव में, तो कभी हमारे इस्कॉन में 4:30 को होती है, कभी श्याम सुंदर मंदिर में ओरिजिनल श्याम सुंदर जी के पास 3:30 बजे होती है, कुछ 4 बजे होती है, ऐसे अलग अलग टाइमिंग है, हतारामन में 5 बजे होती है। तो ये पुजारी आ गए सुबह भोर के समय, तो ये दरवाजा खोलने लगा, अरे खोलो मत खोलो मत, तो अभी अभी आए हैं। बोले कल रात को लगा था पागल है, तो अभी निश्चित समझ गए कि पागल ही आदमी। बोले मत खोलो, अभी तो आए हैं वो, रात भर रास नृत्य कर रहे थे, थके हुए आए अभी, थक के अभी 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 सोए हुए हैं। बोले निश्चित रूप में पागल आदमी, इसको हटा दो यहाँ से। तो वो तो डेस्परेट है, बोले नहीं आप जा सकते नहीं अंदर। तो थोड़ा हाथापाई हो गई, तो वो लोग रोक रहे थे, तो वो सब जो बातें चल रही थी उनकी, हाँ ना हाथापाई चल रही थी। तब देखते हैं तेरे इसके ऊपर शॉल, ये कौन सा शॉल है इसके ऊपर? मैं तो कह रहा हूँ आपको ना कि वो जब अंदर चले गए तो मैं ठंड लग रही थी, अपना शॉल उतार कर मुझे पहना के गए वो। तब उनको कुछ ऐसा मन में विचार आ रही, चोर तो नहीं आदमी, ताला वाला तोड़ के अंदर जाके कुछ किया तो नहीं होगा, लेकिन कैसे तोड़ेगा, इतना बड़ा ताला, इतना दरवाजा बड़ा लगा के रखा है, कौन तोड़ सकता है, इतना बुढ़ा आदमी के अंदर शक्ति कैसे हो सकती है? तो पहली बार आया है यहाँ पर। तो बड़े उत्सुकता से वो उसको छोड़ते हैं, तुरंत दरवाजा खोल के अंदर भागते हैं और देखते हैं ठाकुर जी के ऊपर शाल जो है वो गायब है। तब वो समझ जाते हैं कि आदमी पागल नहीं है, भक्त है भगवान का, उसको दर्शन दिया भगवान ने, सेवा की, भक्त सब पूरा वर्णन करता है वो, मैं कहाँ कहाँ गया, कौन से कुंज के पास खड़ा रहा, फिर क्या चला उधर, क्या सुना मैंने, वापस लौट के आया, सब बताया। तब उसको विश्वास हुआ और तब से बांकी बिहारी की मंगल आरती जो है वो 9:30 बजे होती है ऐसा भाव है। एक बूढ़े व्यक्ति की उत्सुकता, क्योंकि वो ये जानता था कि मेरे पास समय बहुत कम है और मुझे सर्वोच्च व्यक्ति की सेवा करनी है, और उसको पता भी नहीं था कि सर्वोच्च व्यक्ति को ढूंढ रहा था, और उसके प्रयास में समय कम होते हुए भी भगवान ने उसकी उत्सुकता को देखते हुए उसको परिचय भी दिया कि सर्वोच्च व्यक्ति कौन है। और सर्वोच्च व्यक्ति कौन है पता लगने पर वो तुरंत उसकी सेवा में लग गया। क्या हम लोग उतने उत्सुक है क्या? सोच रहे कि अभी तो 20 साल की उम्र है, अभी क्या बहुत साल बाकी, एंड तक हो जाएगा, नहीं तो फिर अगली लाइफ तो है ना, नेक्स्ट लाइफ है ना, नेक्स्ट लाइफ में देख लेंगे, दो चार लाइफ पंच होता ना, पंचवार्षिक योजना होती ना हमारी गवर्नमेंट की, तो हम पंच जीवन योजना बना सकते हैं 5 लाइफ टाइम्स में हो जाएगा काम अपना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा विचार करने से आगे समस्या बढ़ती है, क्योंकि कलयुग जो है वो अच्छाई की प्रगति नहीं कर रहा है, उसका ह्रास होते जा रहा है, कलयुग इज डिग्रेडिंग। इसलिए समय बहुत कम है और बिगड़ने वाला समय है, और आगे आज जो समय है वो कल नहीं रहेगा, आज जो अच्छाई है वो कल नहीं रहेगी। हमारे बचपन में जो अच्छाई थी, हमारे बचपन में कैंप में 8वीं के कैंप में शिविर में हम लोग गए थे तो किसी ने छुप के रात को सिगरेट पिया तो उसको स्कूल से निकाल दिया, स्कूल से रस्टिकेट कर दिया तुरंत। आज अगर सिगरेट पिएंगे तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि सब लोग सिगरेट पीते हैं, टीचर भी पीता है, तो किसको किसको निकालेंगे, स्कूल ही खाली करना पड़ेगा। हाँ, 1964 के पहले भारत में अगर कोई गर्भपात करता था ना तो गांव के लोग उसको परिवार के साथ हद्दपार करते थे, गांव में रहने देते नहीं थे उसको। आपने भ्रूण हत्या किया है, गर्भ हत्या किया, सबसे बड़ा पाप है ये, आप इतने पापी हो कि हमारे नेबर में, हमारे परिवार क्या पड़ोस में आप रह सकते नहीं। लेकिन 1964 में हमारे पूज्य प्रधानमंत्री ने इसका कायदा बना दिया, और उसके बाद में एकदम खुलेआम सब लोग, हर एक परिवार में तो आम तरीके से गर्भपात होता है, पैसे के लिए, पैसा नहीं है या तो सुविधा नहीं है, ये नहीं है वो नहीं, हजार कारण के कारण हो जाता है, नथिंग ग्रेट। हाँ, 60 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये में काम हो जाता है, सीएल की भी जरूरत नहीं है, हाफ डेली में काम हो सकता है। मतलब क्या, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? हाँ, मांसाहार करना एक म्लेच्छ यवन ऐसा मानते थे, मतलब जो गंदे शूद्र होते हैं ना लोग, वो मांसाहार करते हैं, तो ब्राह्मण भी मांसाहार करते हैं, अरे गोस्वामी मांसाहार करते हैं, दिन में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, रात में मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं। देख रहे हैं शादी चल रही है, क्या हो रहा है, कुछ देर बाद जाके देखेंगे सब लोग टाइट मिलेंगे आपको। शादी तो भगवान के समक्ष यज्ञ करते हुए प्रतिज्ञा करनी होती है, ठाकुर जी का पूरा उत्सव है वो, हमारे आनंद का उत्सव नहीं विवाह, मतलब एक बड़ी जिम्मेदारी ठाकुर जी के नाम से हम स्वीकार कर रहे हैं, एक परिवार को कृष्ण भावना मिलाने की। और हमारे भी, हम तो ब्राह्मण हैं जन्म से, हमारे शादी में कभी भी लहसुन प्याज का प्रादुर्भाव होता नहीं था, लेकिन आज हमारे शादियों में सब जगह पर लहसुन प्याज और धीरे नॉनवेज भी आने लगा है, ब्राह्मण गौड़ सरस्वत ब्राह्मण की शादी में अभी सब कुछ चल रहा है, तो अधोगति है कि नहीं? ये तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमको उत्सुकता होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये कथा मैंने इसलिए बताई कि हमारे पास आज जो सेवा मिल रही है वो कल मिलेगी कि नहीं पता नहीं हमको, क्योंकि हम जीवित रहेंगे कि नहीं इसका एक हमको गारंटी नहीं है। अगले साल और बढ़िया करेंगे, अगले साल किसने देखा है, हु नोज, कलयुग में इतना समय खराब है कि हम लोग कब तक जिएंगे पता नहीं है। आज जो सेवा मिल रही है वो आज हमको सबसे बेस्ट चेतना में, सबसे बेस्ट भावना में, सबसे बेस्ट निरपेक्ष भावना से उसको करना है, क्योंकि हमारे हाथ में केवल आज है, इतिहास तो चला गया, भविष्य अभी आने वाला है, किसने देखा है, हमारे हाथ में केवल वर्तमान है, वर्तमान ही हमारे हाथ में, बस वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं वही हमारे हाथ में है बस, भविष्य में करेंगे ये तो केवल सपना है और केवल वादा है, पूरा होगा कि नहीं किसने देखा है। इसलिए आज हमारे हाथ में जो सेवा जो है उसका अगर परिणाम भी हमारे लिए अपेक्षित नहीं मिल रहा है, फिर भी हमको आज की सेवा बड़े अच्छे स्वभाव से, अच्छी भावना से, निरपेक्ष भावना से, उत्कटता से, उत्सुकता से करनी चाहिए। यह इस बूढ़े व्यक्ति का उदाहरण है, ठाकुर जी भी उसको उसकी उत्सुकता देखते हुए तुरंत मंदिर के बाहर आकर दर्शन दिया उन्होंने, बंद मंदिर के बाहर आकर। ठाकुर जी अंदर थे, गर्भगृह में थे, लॉक में थे, तो ठाकुर जी का कोई बंधन नहीं ऐसे। अगर आपकी उत्सुकता है, सारे सृष्टि के नियम तोड़ के ठाकुर जी आपके सामने प्रकट हो सकते हैं, उनको कौन रोक सकता है, क्योंकि वो सर्व समर्थ हैं, सर्व करुणामयी है, हाँ सर्व सर्व दयालु हैं, वो सबसे दयालु। अभी शबरी का उदाहरण मुझे याद आता है, शबरी का उदाहरण मतलब क्या, इंतजार, सेवा का परिणाम कब मिलेगा पता ही नहीं हमको। 5 साल की उम्र में जब उन्होंने कुछ साधुओं की सेवा की, बड़ी लंबी कथा है, अपने उनके घर में बहुत सारे जानवरों को काटते थे, जानवरों को पालते थे, फिर पिताजी काटने को लेके जाते थे, तो जानवरों को जब पालते थे तो पालने की सेवा उसके पास थी, तो बड़े प्रेम से वो है ना बकरियों को सबको पालती थी, बड़े प्रेम से खिलाती थी, बड़े प्रेम से। एक दिन पता चला कि बकरियां तो कम होती जा रही है, तो उसको पता चला कि अरे मेरे पिताजी उसको बड़े होने के बाद में बेच देते हैं और काट देते हैं, बड़ा दुख हुआ उसका, तुरंत घर छोड़ के चली गई, 5 साल की उम्र जंगल में भाग गए, उसको रहा नहीं गया कि तो मेरे प्रिय जो बकरियों को मैं प्रेम से पालती हूँ उनको काटने के लिए भेजा जा रहा है, तो जंगल चली गई वो विरक्त होकर एकदम, किसी को नहीं बताया उसने। 5 साल की उम्र में आप सोच सकते हैं कितनी कोमल भावना होगी, लेकिन शुद्ध भावना थी उसके मन में, कोमल और शुद्ध। और पेड़ के ऊपर भिल्ल थी ना वो, तो उसको पेड़ चढ़ना तो बहुत आसान था उसके लिए, पेड़ के चढ़ में रह गई दुखी भावना में। जब सुबह जगी तो देखा मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, नीचे देखा तो क्या है, बहुत साधुगण जो है यज्ञ कर रहे हैं, पूजा अर्चा कर रहे हैं। तो एक दिन उसने देखा पेड़ के ऊपर बैठकर, फिर पूजा अर्चा खत्म हो गई, साधु लोग सब लोग झोपड़े में चले गए, तो देखा कि बहुत सारे फूल चाहिए, बहुत सारी वस्तुएं चाहिए, तो उस दिन से उसने सबके उठने के पहले फूल बिनकर वहां रखना आरंभ कर दिया, और फिर उनके उठने का समय होगा तो तुरंत जाके पेड़ पर जाके छुपती थी वो। बहुत सेवा किया, साधुगण भी आश्चर्य होने लगे कि ये कौन करता है सब तैयारी, साफ सफाई झाड़ू सब करके, जगह बहुत साफ है, फूल भी तैयार है, पत्तल भी तैयार है, पत्ते जो भी साधन है जो भी हो सकता है नेचुरल सब रेडी है, रखा हुआ है, कौन करता है ये, पूछ रहे हैं, इनको लगता होगा कि वो कर रहे हैं, इनके लग रहा है कि वो कर रहे हैं, कि बाद में चर्चा हुई तो पता चला कि इसमें से कोई नहीं कर रहा है वो, तो कर कौन रहा है। तो उन्होंने तय किया कि देखेंगे एक दिन, सब लोग समय से बहुत पहले उठ गए और अपने झोपड़ी में से दरवाजे को थोड़ा सा खोल के देखने लगे कौन कर रहा है। तो एक कन्या जो है पेड़ से उतर कर सारी झाड़ू लोटा सब कर रही है, सब तैयारी करके फिर बैठ जाकर बैठ रही है, तो साधु जाके उनको फिर पकड़ते हैं, देख कौन हो तुम, बड़े प्रसन्न होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। साधु कहते हैं कि उसमें जो गुरु होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें भगवान रामचंद्र का दर्शन होगा, तो वो इतनी खुश होती है, इतनी आनंद से विभोर होती है, क्योंकि उनके यज्ञ का वो आखिरी दिन होता है, पहले तो छुप छुप के करती थी, बाद में फिर वो खुलेआम करने लगी सबकी सेवा, और वहीं रहकर सेवा करने लगी एकदम निरपेक्ष भावना से, कि मुझे कुछ झोपड़ी मिलेगी रहने को या कुछ ऐसे भोजन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, वो तो कंदमूल खाकर रहती थी और दिन भर सेवा करती थी। फिर साधुओं का अधिष्ठान समाप्त हो गया, साधु लोग अपना सब कुछ पैक करके जाने लगे। उस समय साधु ने कहा, गुरु महाराज ने, कि तुम्हें ठाकुर जी का दर्शन होगा, तो वो इतनी छोटी सी कन्या इतनी आनंद विभोर हो गई, नाचने लगी, उसके आंखों से आंसू आने लगे, कंपन होने लगा शरीर का उसके, रोमांच होने लगा, और साधु सब लोग निकल गए। साधु सब जब निकल गए और क्षितिज के पास भी चले गए, उनको दिखाई पड़ना भी बंद हो गया, तब वो थोड़ी होश में आई, तब उसके मन में विचार है, मैंने पूछा नहीं कब दर्शन होगा, तो पूछा नहीं, अरे अभी क्या करें, चले गए सब गुरु महाराज। तो फिर उनको लगा कि कल भी आ सकते हैं, आज भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं, तुरंत तैयारी में लग गई, ठाकुर जी आएंगे तो क्या करूंगी, तो जंगल के बेर खिलाऊंगी, फूलों से रास्ता सजाऊंगी, फूलों की माला बनाऊंगी, फूलों का आसन बनाऊंगी, फूलों का ये करूंगी, उसका वो बनाऊंगी। और 5 साल की उम्र से उसने 80 साल तक रोज ये सेवा की। आप सोच सकते हैं वो 5 साल की बालिका फिर युवावस्था में आई होगी, युवावस्था से फिर 30 साल की हो गई होगी, फिर मध्यम आयु की हो गई होगी, फिर 50 साल की हो गई होगी, फिर 60 साल की हो गई होगी, फिर उसकी दृष्टि ओझल हो गई होगी, फिर 70 साल की हो गई, फिर 80 साल की हो गई, 85 साल की हो गई, फिर भी ठाकुर जी नहीं आए। लेकिन अपने गुरु के वचन पर उसको विश्वास था, और वो रोज इतनी, वो बाद में इतनी बूढ़ी हो गई कि उसको दिखना भी बंद हो गया, सब दांत भी गिर गए उसके, थोड़े बहुत इधर उधर सब थे, और वो झुक गई, उसके पैरों में दर्द होने लगा, सब शरीर जर्जर हो गया बुढ़ापे की वजह से, फिर भी रोज फूल बिन रही है और रोज जो सड़क है उसको फूलों से सजा रही है। और कहाँ ठाकुर जी को बिठाएंगे और कहाँ बेर खाएंगे, और वो बेर चुन के उसको रोज रोज थोड़ा चखे, कौन से मीठे है वो बाजू में, कौन से खट्टे हैं उसको बाजू में करके रोज तैयारी कर, वैसे ही तैयारी कर रही वो। 85 साल के बाद में एक दिन वो बड़े झुककर, मतलब ऐसे घुटनों को टेक कर जो फूल सजा रही सड़क पर, तो 4 कदम उसको दिखाई पड़ते हैं, दिव्य कदम, प्रकाशमान। तो उसको ऊपर देखने के लिए भी टाइम लगता है क्योंकि बहुत बूढ़ी है ना, वो धीरे धीरे देखती है कौन है, तो वो धनुष देखती है, फिर उनके सन्यासी के वस्त्र देखती है, हाँ, और फिर मुखकमल देखती है, फिर मुखकमल के बाद जो जटाधारी है, जटा धारण किया है, उनको देखती है और वहीं उनके चरणों में आंसुओं के साथ गिर जाती है। ठाकुर जी उसको हाथ से उठाते हैं और धीरे धीरे वो उनको इतना प्रेम स्वागत करती है, प्रेम से मीठे मीठे वचन बोलते हैं, ठाकुर जी आप आए, प्रभु रामचंद्र आप आए, आइए मेरी कुटिया में आइए, क्या कुछ गलतियाँ करती है भाव विभोर होकर यहाँ वहाँ, और उनको बिठाती है और माला पहनाती है और फिर देखती है, फिर निहारती है, फिर देखती है, फिर निहारती है, फिर बेर खिलाती है। लक्ष्मण जी को अच्छा लगता नहीं है, अरे तो हम उनको तो बढ़िया से भूख लगाते हैं, प्रेम से उनको खिलाते हैं, फिर हम खाते हैं, जो खाए हुए बेर खिला रही है। तो लक्ष्मण जी को भगवान कहते हैं अभी शांत हो जाओ, इसका उत्तर बाद में दूंगा, अब मुझे बेर का आनंद देने दो। वो ठाकुर जी को अपने हाथ से बेर खिला रही है, ठाकुर जी खा रहे हैं आनंद से, उनकी आंखों से अश्रु आ रहे हैं, सबरी की आंखों से अश्रु आ रहे हैं। और उसी समय जब ये सेवा पूर्ण होती है तो ठाकुर जी उसी समय सबरी को अपने अयोध्या धाम भेज देते हैं, मतलब दिव्य अयोध्या धाम वैकुंठ में। उनके सामने दिव्य देह प्राप्त करके सबरी वैकुंठ में प्रवेश करती है। लेकिन इतना साल इंतजार किया, पूरा जीवन भर, पूरी बचपन की अवस्था से युवावस्था से मध्यम अवस्था से बूढ़ी अवस्था से बड़ी बड़ी बूढ़ी अवस्था तक कभी भी उसको पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन गुरु के शब्द पर उनको विश्वास था और बड़ी इत्मीनान से संयम के साथ उन्होंने सेवा किया। जिस दिन वो सेवा कर रही थी, जिस दिन प्रभु जी आए, ठाकुर जी आए, उस दिन भी उसको पता नहीं था कि वो आने वाले हैं, वो तो नित्य नियम से अपनी सेवा कर रही थी बिना कोई फल के अपेक्षा के साथ। तो बड़े चाव से बोलते हैं ना हम लोग, अरे गीता मतलब क्या, कर्मण्येवाधिकार रस्ते, बस भारत में गीता मतलब क्या, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, बस दैट्स ऑल, गीता उसके आगे बढ़ती नहीं है। और कहने में सब लोग इतने एक्सपर्ट है, हमारे रिक्शा वाले, हमारे भंगे, सब सबको बायहार्ट है ये श्लोक, लेकिन 50,000 बार बोलने के बाद भी हम हर कर्म के फल की अपेक्षा करते हैं। शबरी इतना दिव्य उदाहरण है इसका, ये सेवा कर से कैसे करनी चाहिए। ये शबरी की कथा बहुत ज्यादा बार चर्चा नहीं होती इसकी, लेकिन बहुत ही उत्कट उदाहरण है शबरी का, ऐसा दिव्य उदाहरण है। कैसे कर सकता है एक व्यक्ति, हाँ, एक तो कोई अकेला व्यक्ति है तो कोई साथ साथ में कोई भाई उत्साह बढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति भी नहीं, भाई ओके डोंट वरी, डोंट गेट डिस्करेज्ड, आएंगे वो, आप अपना सेवा करते रहो, क्या करूँ बहुत बोर हो रहा है अभी मुझे, पता नहीं क्या हो रहा है, अभी कितने साल हो गए, बूढ़ी हो गई मैं, अच्छा दिखाई पड़ता, अभी दिखाई पड़ना भी बंद हो गया है, अभी फूल बिनने को इतनी शक्ति थी पहले, अभी वो फूल बिनने के लिए शक्ति भी नहीं रही, क्या आएंगे क्या वो, अभी छोड़ दूँ क्या, बहुत हो गया अभी। नहीं नहीं चिंता मत करो, आप आएंगे, आप गुरु ने कहा है ना आपको, आपको श्रद्धा रखनी चाहिए। अरे बताने के लिए कोई काउंसलिंग करने के लिए है ही नहीं कोई, केवल गुरु जी का आदेश, यही काउंसलिंग उसका ही हो रहा है, करो बस, हृदय से काउंसलिंग है पूरा उत्साह के साथ। रूप गोस्वामी कहते हैं ना, उत्साह धीरे उत्साह धैर्यात निश्चयात तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्, ये भक्ति के दो रेलिंग है, ये हाँ पटरियां है, इस पर रेल चलती है भक्ति की। उत्साह के साथ संयम भी होना चाहिए, बड़े निश्चय के साथ में सेवा हो रही है, फल मिले या ना मिले, लेकिन तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्, कर्म जो है वो चल रहा है, उसमें कोई बाधा नहीं आ रही है। तो ये सबरी का उदाहरण है। और अगर आपको उदाहरण भी सुनाना है तो मैं आपको यहां का करंट अभी का उस व्यक्ति को आप मिल भी सकते हो। हाँ, आपको लगेगा कि भाई प्रभु जी आप तो रामायण और महाभारत तो गए गुजरे इतिहास का काम उदाहरण दे रहे हैं, कौन कर सकता है उनकी तुलना। अभी हम लोगों को सुनने को अच्छा लगता है कि हम लोग नहीं कर सकते उनको, लेकिन ये व्यक्ति अभी भी है हमारे बीच में। हाँ, आप जानते हैं ना, आप लोगों को कई बार आप में से कई लोग गए साल में वो गौशाला में यात्रा करने गए होंगे ना, कितने लोग गए थे याद है किसी को, गौशाला में हम लोग गए थे ना, 20,000 गाय वहां पर है, तो दर्शन भी आपने किया होगा एक साथ में शाम के समय, तो वो गौशाला में 20,000 गाय हैं, उसको 7 लाख या 8 लाख दिन का खर्चा है, उसमें कई प्रकार की गायें हैं, कोई बूढ़ी है, कोई दूध देने वाली है, कोई बीमार है, कोई बच्चे वाली है, बच्चे में फिर बच्चे में गाय है, बैल बच्चे हैं, बछड़ा और वत्स है, और कोई अलग अलग प्रकार, कोई एंजोर्ड है उनको अलग रखा गया है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है उसके अंदर, उसका दूध निकालने वाले गायों का दूध निकालना भी होता है, उसका प्रोसेसिंग करना भी होता है, उनको चारा लाना होता है, उनको खिलाना होता है, उनको बाहर जाके इतना भी वन तो है नहीं अपने पास कि भाई नंदगांव से गए मथुरा तक घुमा के लेके आए उनको 20,000 गायों को, इतना उसका गौचारण भी नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या करते हैं यहाँ से वहाँ थोड़ा सा पहाड़ पर लेके जाते हैं, पहाड़ से घूमते हैं वो धूप खाते हैं फिर वापस आते हैं, वो भी एक बड़ा काम होता है मैनेजमेंट, उसकी इतने गायों को एक साथ निकालना फिर गाइड करना, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, बीच में घी भी बना तभी घी बंद हो गया बनाने का, उसको भी एक प्रक्रिया मंथन करना, ये करना वो करना बहुत सारा, फिर मेहमान लोग आते हैं उनके लिए भोजन बनाना, 50 आते हैं कोई 25 आते हैं, इतना काम है उसके अंदर, और कल का पैसा कब आएगा पता नहीं, ऐसे मैनेजमेंट के अंदर वो ब्रजचरण बाबा करके ऐसे ही है, 30-35 साल 40 साल के होंगे शायद, बड़े साल से मान मंदिर के भक्तों के संग निवास कर रहे हैं वो, जब रमेश बाबा जी की माताजी हाँ उनका देहांत हो गया तो उनके नाम से ये गौशाला बनाई गई माताजी गौशाला, क्योंकि ब्रज में आप जानते हो इतना खराब काल आ गया है, मैं आपको कह रहा हूँ ये बात, ये आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या कहते हैं उसको ईगर उत्सुक क्यों होना है भक्ति में, क्योंकि जो आपको आज दिखाई पड़ रहा है वो कल नहीं दिखाई पड़ने वाला है, जहाँ पर निर्भय होकर गाय व्यवहार करती थी वहाँ पर आज गाय कट रही हैं, ब्रजवासी लोग भी दूध देने के बाद बंद करने के बाद में गाय को बेचते हैं कसाई के पास और कटवाते हैं उसको पैसे के लिए, गरीबी भी आ गई है और श्रद्धा भी कम हो गई है, हाँ और कुछ लोग यवन लोग उसको रात को गाड़ी में लेके शस्त्र लेके आते हैं और गौशाला में घुस के गायों को बैलों को उठा के लेके जाते हैं और रात ही को काट देते हैं उसको, ऐसा भयंकर माहौल है। मथुरा में 2 गौशाला कत्तल खाना बनाने का प्लान था, फिर बहुत मुश्किल से उसको कैंसिल कर दिया गया, बहुत लोगों ने आंदोलन वोलन किया, ये ब्रज की हालत है, और बम्बई दिल्ली का तो छोड़ ही दो आप बात, सब पैक मिलते हैं आपको देखने की जरूरत ही नहीं कहाँ कट रहा है वो, पूरा ब्लैंड वगैरह एडवर्टाइजमेंट के साथ उसके दाम के साथ उसके गुणों के साथ वर्णन करते हुए आपको मिलता है वो, हाँ तो ब्रज की ये एक सिचुएशन है। तो ये देखते हुए कि ब्रजवासी लोग दूध बंद करने के बाद में गाय को छोड़ देते हैं, इसलिए उन्होंने लोगों को आह्वान किया कि जब आपको गाय मेंटेन करना भारी हो जाएगा हमारे पास छोड़ दो, दोबारा नहीं मिलेगी, एक बार दे दिया तो फिर हम लोग उसको देखेंगे, फिर वो दूध दे नहीं दे, बूढ़ी हो, इंजर्ड हो, एक्सीडेंट में पड़ी हो, कुछ भी हो, तो 1,000 गाय जमा हो गई, फिर 2,000 हो गई, फिर 20,000 गाय जमा हो गई, अभी उसके लिए जगह ली गई, कई एकड़ जगह ली गई, वो एक और एक इन्वेस्टमेंट खर्चा उसका, फिर गौशाला का शेड बनाया गया, हाँ फिर उसका 1,00,000 किलो रोज गोबर पैदा होता है, मैं जब गया था आपको देखा था ना, तभी कुछ 6 फीट का गोबर का थर था जमीन पर उसके ऊपर वो गाय चल रही थी, उसका भी एक मैनेजमेंट है, उसको निकालना, उसको कहीं भेजना, बेचना, जो भी कुछ करना है, उसका खाद बनाना है, क्या करना है, इतना मैनेजमेंट है, फिर गौमूत्र है उसको इकट्ठा करना है, उसके लिए कुछ करना है। तो ये ब्रजचरण बाबा जो है उन्होंने ये सेवा स्वीकार किया कि मैं अभी गौशाला में सेवा करूँगा, उसको इंचार्ज बन गए। तो फिर वो वहीं पर रोटी पाने लगे, वहीं पर भोजन करने लगे, और कभी गाय का दूध भी पीते थे, गाय दूध दे रही है, बाल बाल भी पी रहे हैं, वो खुद भी पीते थे, कभी छाछ भी पीते थे, कभी मक्खन भी खाते थे, वहीं सेवा कर रहे हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, गलत कर रहे हैं ऐसे बोलेंगे क्या, अरे ठीक है अभी वहीं साफ सेवा कर रहे हैं, और कुछ उनके जीवन में और कुछ और कोई आश्रय नहीं है, उसी में लगे हुए दिन रात, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक दिन वो रमेश बाबा जी के पास मिलने गए, और गौ पालन की गौ कैसे करना है उसका डिस्कशन हो रहा था, तो रमेश बाबा जी महाराज जो उनके गुरु समान हैं, उन्होंने उनको बताया कि आपको गौ की सेवा करते हुए गौ से कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गौ के द्वारा प्राप्त होने वाला कोई भी वस्तु का आपको भोग नहीं करना चाहिए। गौ की सेवा निरपेक्ष होनी चाहिए। अगर आपको सही रूप में गौ की सेवा करनी है, सही रूप में गौ सेवा करके भगवान को प्रसन्न करना है, तो आपको गौ की सेवा करते हुए गौ से कुछ भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हम उसका दूध बेचेंगे और हम उसका खाद बना के बेचेंगे और हम उसका मक्खन बेचेंगे, हम घी बनाएंगे बेचेंगे और हम उसका दूध पिएंगे और शरीर को हष्टपुष्ट करेंगे। गौ की सेवा निरपेक्ष होकर करना चाहिए। उस दिन से ब्रजचरण बाबा ने गौशाला का एक बूंद दूध भी पीना छोड़ दिया और वहाँ की रोटी, वहाँ की सब्जी, वो भी खाना बंद कर दिया जो गौशाला के डोनेशन के पैसे से आती थी। आज वो दिन भर वही सेवा करते हैं, होल डे एंड नाइट पूरी गौशाला की सेवा करते हैं, उनमें सेवा में कोई अंतर नहीं आया है। लेकिन वो सेवा करने के बाद जब भोजन का समय होता है तो जो मेहमान आते हैं उनके लिए भोजन बनाते भी हैं, उनको परसते भी है, उनको छाछ देते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, उनको मक्खन का गोला देते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद में भिक्षा मांगने के लिए मानपुर जाते हैं और घर में जाकर भिक्षा मांगते हैं। जो सूखी रोटी मिलती है वो लाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, अमनिया मानकर उसको खाते हैं, फिर सेवा में लग जाते हैं। और फिर शाम को भूख लगती है तो फिर सबको परोस के फिर जाते हैं मानपुर में, फिर भिक्षा करते हैं, फिर दो रोटी लेके आते हैं, जो मिलेगा वो भोज लगाते हैं और खाते हैं। मैं सोच रहा था कि ये इस जीवन में मैं नहीं कर सकता, कि जब हम कुछ सेवा करते हैं खास करके नेता के रूप में, अगर लीडर के रूप में कि मैं भोगशाला का इंचार्ज हूं, तो समय किधर है? आप बोलेंगे अभी भिक्षा भी करना है, क्या प्रभु जी इतना सेवा कर रहा हूँ अभी टाइम किधर है, थक गया हूँ भिक्षा कहाँ मांगने जाऊँगा अभी। लेकिन निरपेक्षता जो है ना, ये विरक्ति जो है, ये बड़े इन लोगों के अंदर बहुत खास के भरी हुई है। बाबा भी ऐसे ही विरक्त बाबा है, एक जमाने में ऐसे रहते थे वो फक्कड़ की तरह। हमारे गुरुदेव उनके पास रहे 6 महीना, सब लोग मानपुर में भिक्षा मांग के भोजन करते थे बांट कर। 2-3 बाबा थे, एक रमेश बाबा थे, एक सखी शरण बाबा थे, एक हमारे गुरुदेव थे। मतलब रमेश बाबा जी कुछ 30-35 साल के थे, हमारे गुरुदेव 19 साल के थे, सखी शरण बाबा ऐसे ही कुछ 30 साल के थे। पहाड़ पर कोई रहता नहीं था, ये सब लोग पहाड़ के उतर के गांव में जाकर भिक्षा करके अपना जीवन चलाते थे। तो विरक्ति और निरपेक्षता, निष्प्रोहता जो है, अभी वहाँ पर भागवत जी कथा चलती है, सब लोग पूरे देश विदेश में उनको आमंत्रण आता है। और भागवत की कथा का क्या रहस्य है, भागवत कथा करने का प्रोफेशन बन गया आजकल। अगर आपको अच्छा बोलना आता है थोड़ा बड़ा संस्कृत सीख लो, भागवत कथा का अभ्यास कर लो, एक बार संस्कृत कर लिया, शास्त्री कर लिया, फिर अपना पेशा बनाओ। जो भागवत कथा करते हैं, जो बुलाते हैं यजमान, उनके कथा में जो भी डोनेशन आता है व्यासपीठ पर, वो सब भागवत के जो व्यासदेव हैं वो ले जाते हैं, सब उनका है। लेकिन शास्त्र में लिखा है कि किसी भी कीमत पर भागवत कथा करने पर उसका अगर आप दाम लेते हो तो वो अपराध माना गया है। वो मनी, जो पैसा जो आता है भागवत कथा में, उसको अगर अपने भोग के लिए आप यूज करते हो तो आपकी मति भ्रष्ट हो जाएगी। भगवान का विषय, भगवान का कथा, भगवान का नाम, ये हमारी जीविका का साधन नहीं होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए। और अगर वो भगवान का नाम, भगवान की कथा के ऊपर आप धन कमाते हो और उस पर अपना जीवन चलाते हो तो आपकी मति भ्रष्ट हो जाएगी, शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक वही एक जगह है मान मंदिर, वहां से जो भगवत कथाएं होती है वो एक रुपया भी खुद के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो गौ की सेवा के लिए, धाम के उद्धार के लिए, पहाड़ों के बचाव के लिए, जमुना बचाव के लिए, एक एक रुपया जो भी उनका चल रहा है, वेबसाइट चल रही है, किताबें बांट रही हैं, एक कभी भी आप वहां जाएंगे कोई भी किताब वहां पर आपको पैसे से नहीं मिलेगी, फ्री में मिलेगी। कोई आपको सीडी चाहिए, कोई लेक्चर चाहिए, कुछ चाहिए, सब कुछ फ्री। गौशाला में जाओ, वहां पर आप दूध पिएंगे, दूध फ्री, एवरीथिंग फ्री, कोई अपेक्षा रखते नहीं। और ठाकुर जी भी ऐसे लोगों को भरपूर साधन देते हैं। आप जाएंगे, हमको 4 किताबें दो, आप एक किताब नहीं 4 मांगेंगे और 10 किताबें दो, हम औरों को देंगे, 10 किताब तुरंत निकाल के देंगे, या तो आपके पास भेज देंगे। आप कहाँ पर हो, राधा माधव में हो, 10 किताब भेज देंगे आप, नई किताब आई है भेज देंगे आप। निरपेक्ष भाव कैसा होता है, ये उदाहरण है। और आज के ज़माने में ऐसे उदाहरण है कि लोग ऐसा कर सकते हैं। और अभी आप सोचिए, वो ब्रजचरण बाबा के उदाहरण के सामने अपने मन को आंख बंद करके विचार करिए, मेरे मन में कितनी अपेक्षाएं हैं। अगर मैं बरसाने में आकर सेवा भी कर रहा हूं तो मेरे मन में कितनी अपेक्षाएं हैं, क्या क्या मैं चाहता हूं, और कुछ कुछ चाहना ऐसा होता है कि पता भी नहीं हमको, लेकिन मन के अंदर वो चाह होती रहे। देर इज एक्सपेक्टेशन इन द माइंड, वी डोंट इवन नो, ऑटोमेटिकली मन उसकी अपेक्षा कर रहा है कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। सेवा को उन्नति करने के लिए हम लोग सुझाव दे सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसे हमारे मन में जान न जानते हुए भी कई अपेक्षाएं होती हैं। लेकिन राधा रानी का जो मैंने आपको बताया मूल स्थाई भाव क्या है, निरपेक्ष सेवा। उनका जीवन क्या था गोपियों का, 10 साल के बाद छोड़ के चले गए। हाँ, आज मैं जब जा रहा था मंगल आरती से वापस लौट रहा था तो मुझे एक व्यक्ति मिले, ब्रजवासी मेरे मित्र मिले, वो सी पलसो से, सी पलसो नाम का गांव है, हाँ, जो गोवर्धन के रास्ते में मिलता है। सी मतलब शीघ्र, उसका वो अभी सी हो गया है, और पलसो मतलब परसों, तो शीघ्र अगस्त्य परसों, ऐसे भागवत में श्लोक है, जो भगवान जो गोपियाँ उनको दोबारा पकड़ती हैं भागते हुए, तो वो कहते हैं कि मैं जल्दी आऊँगा, परसों आऊँगा, तो गांव का नाम पड़ गया सी पलसो। तो उसके मिले वो उस मुझे भक्त मिले वहाँ पर, तो मुझे उसकी याद आई कि भगवान ने उनको बता किया था कि मैं 2 दिन के बाद में आऊँगा। वो मिले उनको, क्या नाम उनका, पुचरिका लौटा, लौटा बाबा, उन्होंने कहा अरे मेरे घर में आज भोजन है आपका, तो आप, मेरा टर्न था आज, मेरे घर से छाक आने वाली थी, तो बोले कोई बात नहीं परसों आऊँगा। सब ग्वाल बाल मिले उनको, बोला परसों आऊँगा, अभी जाके आता हूँ 2 दिन में। गोपियों को, गोपियों तो बोले हमारे ऊपर रथ लेके चलो, हम मर जाएंगे आपके बिना, चाहते नहीं रहना हम यहाँ पर आपके बिना। बोले ऐसे कैसे बात करते हो, कैसा प्रेम है आपका, श्रद्धा रखो, मैं कह रहा हूँ परसों आऊँगा मैं। तो फिर हट जाते हैं, फिर रथ चले जाता है, वो लोग दुखी हो जाते हैं। भाई परसों तक इंतजार करना आसान काम है ना, उन्हें 100 साल तक इंतजार किया, टू बी प्रिसाइज 112 साल तक इंतजार किया। और छबरी ने जैसा किया था वैसे ही रोज वो आएंगे, इसके लिए माला बनाना, 56 भोग बनाना, निकुंज की तैयारी करना, निकुंज को सजाना, लीला स्थली नंदा देवी के आदेश में उसको तैयार करना, वस्त्र पहनना, खुद के लिए श्रृंगार करना, उनके श्रृंगार की व्यवस्था करके रखना कि आएंगे तो ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये खिलाएंगे, ये राग गाएंगे, ये रुद्र नृत्य में, ये ठुमक, ये ताल पे नाचेंगे, ये वाद्य बजाएंगे, हाँ, ये कलर के फूल होंगे, ये कलर के वस्त्र होंगे, सारी व्यवस्था जैसे रोज हो रही है वैसे ही करते थे। रात को आते नहीं थे वो, तो फिर सारी मालाएँ और भोग सब तोड़ तोड़ कर छाती पीट कर रोते थे, फिर भोर के समय नई आशा लेकर, नया उत्साह लेकर फिर दोबारा कोशिश करते थे, दोबारा अपना काम शुरू करते थे। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, एक साल नहीं, एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 100 साल, 112 साल तक उन्होंने किया। कभी सोचा नहीं है, अरे तो मथुरा में गए ना तो 11 किलोमीटर तो है यहाँ से, चले जाएंगे, मिल के आएंगे उनसे। क्यों नहीं गए, बहुत लोग पूछते हैं क्यों नहीं गए वो, क्योंकि उनको आदेश नहीं था। भगवान ने कहा था वो आएंगे, मतलब आपको यही मिलेंगे, तो वो चाहते नहीं थे कि भगवान के इच्छा के खिलाफ हम कुछ करें, आगंतुक बनकर अपनी बुद्धि चला कर रहे, तो वो नहीं आए तो हमको जाना पड़ेगा मिलने के लिए, तो छोड़ के जा रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं, किधर हो, नहीं गए वो। जब उनका विरह चरम सीमा पर पहुंच गया तभी भी नहीं गए वो, ऐसे नहीं बोला उद्धव जी किधर है वो, चलो ले चलो आपको रथ लेके आए, हमको बिठा के ले चलो, हमको जाना है अभी मिलने के लिए, नहीं, केवल हृदय की बात बताई, लेकिन उनको बोला नहीं कि हमको अब भी मिलना है उनसे, जब उनकी मर्जी होगी तब मिलेंगे तो हमको मंजूर है। इसी का अर्थ है आश्लिष्य बा पादरताम पिनष्टु माम, अब मिलेंगे तो भी अच्छा है, ठुकरा देंगे तो भी चलेगा, कुचल देंगे तो भी चलेगा, जो आपकी इच्छा है आप करने में समर्थ हो, लेकिन हम आपके भक्त बने रहेंगे, सेवक बने रहेंगे, आप हमारे आराध्य प्राणेश्वर बने रहेंगे। ये निरपेक्षता कितनी चरम सीमा की है, ये तो हद हो गई ना, अभी जीवन भी जा रहा है उनका, जीवन जाने का समय आया। भगवान को अंतर्ध्यानी तो अंतर्ज्ञानी तो है भगवान, तो जानते भी थे, खबर भी मिल रही थी उनको कि गोपियां अभी प्राण छोड़ रही हैं, मैया और बाबा भी प्राण छोड़ रहे हैं, गैया और बछड़े भी प्राण छोड़ने वाले हैं। तब वो दंत वक्र के मारने का बहाना करके मथुरा में प्रवेश किया और सबको उस चरम सीमा के क्षण में उन्होंने उनको गौलोक धाम लेके गए। लेकिन गोपियों ने कभी ऐसा अपेक्षा नहीं कि हमारे मन की तरह होना चाहिए, उनका सर्वस्व, उनका मन तन धन, उनके विचार, उनका जीवन, उनकी सांस, उनकी धड़कन सब भगवान की संतुष्टि के लिए समर्पित थी। उसका यह भी नहीं था कि हम इतना सब कर रहे हैं तो आप कम से कम हम मिलो, हमारे संग रहो। कितने दिन हो गए, गीत गाते थे विरह के, लेकिन व्रत छोड़ के गए नहीं वो कभी। जब 125वें साल की उम्र में भगवान के, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब भगवान ने संदेश भेजा कि आप मुझे मिलने के लिए कुरुक्षेत्र आ जाओ। तो वो कुरुक्षेत्र गए, क्योंकि तो आदेश हुआ तब गए। लेकिन उनके मन में वही 10 साल वाला बालक था, हाँ, वनमाला पहनने वाला, मुरली धारण करने वाला, नंगे पैर घूमने वाला, पीताम्बर धारण किया हुआ, हाँ, कुछ शस्त्र वस्त्र नहीं है, राजवस्त्र कुछ नहीं था, ऐसे ही वन में घूमने वाला बालक, नटखट, माखन चोर, यही उनके मन में छवि थी। वहाँ गए तो क्या देखा उन्होंने, राजा बना हुआ, पूरा मुकुट धारण करके, आगे पीछे सैनिक बिगुल बजा रहे हैं, आगे पीछे, हाँ, सब जगह पर सैनिक हैं, इतना बड़ा रथ है, उसके ऊपर क्या श्रृंगार है, रथ के ऊपर इतना अलंकार लगे हुए हैं, और कितना अंतर है उनके और उनके बीच में, इतने सारे ढेर सारे सैनिक बीच में खड़े हैं, अपने पोजीशन में खड़े हैं, अटेंशन में, और इतनी सारी रानियां उनके साथ में रथ में खड़ी हुई हैं, और बीच में वो खड़े हैं, इतना राजवस्त्र पहना हुआ है, इतना लंबा चौड़ा मुकुट पहना हुआ है, हाँ, जूता पहना हुआ है, अलंकार पहने हुए हैं, राजदंड है उनके पास में द्वारका का, इतना सारा ऐश्वर्य है। बोले ये हमारे कृष्ण नहीं है, हम तो सोच रहे थे इनको ले जाएंगे अभी गौचारण करने के लिए, सोच रहे थे कि रास में लेके जाएंगे, उनको खिलेंगे, उनके साथ में माखन खिलाएंगे, मिश्री खिलाएंगे, मैया का मक्खन लेके आए वो खिलाएंगे, लेकिन ये तो इतना ऑफिशियल काम है, इतना अंतर पार कौन करेगा, इतने सैनिकों के बीच में जाएगा कौन मिलने के लिए, और हम तो गंवार गाँव की और तो लड़कियां हैं, कैसे इस जाता जाएंगे वातावरण के, इसके अंदर कैसे प्रवेश करेंगे हम। बड़ी दुखी हो गई वो, जितना दुख विरह में उनको 112 साल में बहुत दुख हुआ उनको, लेकिन जो दुख उनको उस दिन हुआ वो उनको 112 साल में भी नहीं हुआ था। क्योंकि अगर आप भूखे हैं और आपके पास पैसा ही नहीं है और आपके पास भोजन ही नहीं मिलता है, आपको दर्शन ही नहीं हो रहा भोजन का, तो आप भूख को सहन कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सामने 56 भोग है और आपको बड़ी भूख लगी है बहुत दिनों की, और आपके सामने 56 भोग है लेकिन आप उसको खा नहीं सकते, आपको परमिशन नहीं खाने की, तो वो जो दर्द होगा ना वो ज्यादा होता है, क्योंकि आपकी जो विषय है, आपका जो भोग्य वस्तु है, वो आपके सामने है और आपको उसकी जरूरत भी है, आप भूखे भी हैं लेकिन आप उसका भोग नहीं ले सकते हैं, तो अधिक दुख होता है उसका। नहीं है तो चलो नहीं है, कोई बात नहीं, क्या है, नहीं है तो क्या कर सकते हैं उसका, लेकिन है फिर भी नहीं खा सकते हैं। वैसे 112 साल तो वो थे ही नहीं इधर, क्या करें, नजर में भी नहीं आ रहे, दुख हो रहा है, तड़प रहे हैं, जान भी जा रही है, लेकिन अभी वो सामने खड़े हैं, लेकिन वो नहीं है जो हम चाहते हैं, सामने होते हुए उनको मिल नहीं सकते, इतने साल से तड़प रहे उनके लिए, तो इतने दुखी हो गए वो, इतने दुखी हो गए। ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं कि अगर मैं मरूंगा ना तो मुझे कुरुक्षेत्र में जाके मरना है, क्योंकि वहां पर हमारी गोपियां बड़ी असहाय थी, मैं उनकी सहायता करना चाहता हूं, इसलिए मैं वहीं जाकर अपना शरीर छोड़ूंगा, क्योंकि गोपियों का सबसे बड़ा दुख उनको वहां पर हुआ था, उनके इच्छित वस्तु मतलब भगवान उनके सामने होते हुए भी उनको मिल नहीं पाए, हृदय में तड़पते रहे, हृदय में रथ को खींच खींच के चलो वृंदावन, चलो ऐसे वृंदावन लेके आए, और वहां से भगवान को मिले बिना लौटकर चले आए, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाए कि इनको कैसे हम लोग मिले, अभी तो अलग ही भाव में है ये, पूरे हमारे ग्वाल बाल के भाव में है ही नहीं, तो मिलकर भी क्या लाभ हुआ, बड़े दुखी होकर लौट के आए वो। लेकिन भगवान को उन्होंने कोसा नहीं, उस समय दोष नहीं दिया उनको, क्यों बुलाया हमको, अगर हमको हमारी इच्छा से मिलना नहीं था तो क्यों बुलाया इतना दूर। भगवान ने उनको भाव रूप में अति उत्कट संग दिया, ये बात अलग है दिव्य दृष्टि से, लेकिन गोपियों की लौकिक दृष्टि से उन्होंने कोई अपेक्षा नहीं की, दिल पूरा उनका कुचल गया उसमें, सारी भावनाएं टूट फूट कर बिखर गई, लेकिन फिर भी उन्होंने वापस आने के बाद में चलो अभी छोड़ दो उनकी सेवा, बहुत हो गया अभी, इसके और क्या कर सकते हैं, नहीं छोड़ा उन्होंने। जब तक भगवान आकर उनको उन्होंने उद्धार नहीं किया उनका गौलोक धाम में, तब तक वो सेवा करती रही। बहुत दिव्य उदाहरण है, हमको उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत ये भाव को हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में इस स्तर पे जहां पर हम लोग भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी क्यों ना हो अपेक्षाओं को छोड़ देना चाहिए। आई एक्सपेक्ट दिस टू हैपन, नहीं हो रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, प्रार्थना करते रहना चाहिए कि सेवा दो बस, सेवक की अभिलाषा क्या होती है? सेवा दो बस, और कुछ मत दो। सेवा में यश मत दो, लेकिन सेवा जरूर दो। सेवा कठिन हो, आसान हो, कुछ भी हो, मुमकिन हो, नामुमकिन हो, लेकिन सेवा देते रहो, क्योंकि सेवा हमारा आपके साथ का कनेक्शन है। हम आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बी ऑलवेज कनेक्टेड विथ यू। आप मिले ना मिले, लेकिन हमारा दिव्य संबंध जो है वो बना रहना चाहिए। इसलिए हर साल हम क्या प्रार्थना करते हैं, हर दिन क्या प्रार्थना करते हैं, हर मंत्र जपते हुए क्या प्रार्थना करते हैं? प्लीज एंगेज मी इन सर्विस, मुझे आपकी सेवा में लगाओ। और ऐसे पुकारने पर सेवा मिल जाती है, तो सेवा को स्वीकार करना चाहिए। और सेवा का परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं भी हुआ तो सेवा करते रहने चाहिए, और बढ़ती हुई सेवा को बढ़ती हुई मात्रा में स्वीकार करते रहना चाहिए। तब जाकर हमारा यहाँ आना, सेवा करना सब सफल है। हमारा हमारी सफलता हमारे फल में नहीं है। हाँ, सफलता फल में नहीं है। सफलता केवल प्रयास में है। अगर आप प्रयास 100% कर रहे हैं तो आप सफल हैं। अगर आप उस सेवा को परिपूर्ण करने के लिए 100% अपने मन तन आत्मा से अगर उसको कर रहे हैं और आपको यश नहीं मिल रहा है, लेकिन सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं आप 100%, तो आप सब सफल हो गए, यू आर सक्सेसफुल। जीवन के अंत तक भी अगर आपको उस सेवा का फल नहीं मिलता है तो भी आप सफल हैं, क्योंकि भगवान आपके प्रयास को, उसकी भावना को स्वीकार करते हैं। अगर आपको ठुकराना है तुरंत उसका फल दे देते हैं। जैसे बालक रोता है, बहुत जोर से रोता है, तो पहले माता क्या करती है, उसके मुंह में निपल डाल देती है, या कुछ मिठाई खिलाती है उसको, या तुरंत उनको स्तनपान कराती है, वो रोना बंद हो जाता है। फिर माता उसको रख के वापस चले जाती है। फिर बहुत रोता है, फिर उसको खिलौना देती है। अभी तो खिलाया था, अभी तो पेट भर गया, अभी तो और कुछ चाहता होगा, तो खिलौना देती है, बच्चा शांत हो जाता है। फिर मैया चले जाती है, फिर एक बार रोता है, फिर और कुछ दे देती है, फिर शांत हो जाता है, तो मैया चले जाती है। लेकिन एक बार वो इतना रोता है कि स्तनपान करेंगे तो वो नहीं लेता है, तो खिलौना दिया तो वो फेंक देता है, और कुछ दिया उसको फेंक देता है, और रोते रहता है, तो मैया फिर गैस वैस बंद करके सब कुछ छोड़ के अपने बालक को अपने गोद में लेती है। वो रोना कैसा होता है कि वो रोना मतलब और कुछ नहीं चाहिए, नो खिलौना, आई वॉन्ट यू, तो अपने आप को अर्पण करती है। भगवान क्या करते हैं, आप सेवा करते हैं, आपको पैसा देते हैं, आपको सम्मान देते हैं, हाँ, आपको पद देते हैं, आपकी उन्नति कर देते हैं, आपका ऐश्वर्य बढ़ाते हैं, उसमें आप खुश हो गए तो भगवान चले जाते हैं, चलो भाई आपने आपका खिलौना दिया, वो खिलौने में आपका मन लग गया, चलो हमारा कुछ काम नहीं यहाँ पर। लेकिन ये पैसा, पदोन्नति, कर्म का फल, और आपके लिए जो भी लाभ, प्रतिष्ठा, पूजा, सम्मान, ये सब मिलने पर भी आपको नहीं चाहिए और आप केवल उनको ही पुकार रहे हो, तो फिर वो खुद आ जाते हैं। क्योंकि अभी आपको मेरे द्वारा दिए गए वस्तु नहीं चाहिए, अभी आपको मैं चाहिए, तो फिर वो वस्तुओं को देना बंद करके खुद को देते हैं, और हमको वही चाहिए। ये सब भक्ति के मार्ग के जो फल है ना, ये सब डिस्ट्रैक्शन है, विक्षेप है, हमको यहाँ से पदभ्रष्ट कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है कि हम सब कुछ इंद्रियों का भोग करना भी छोड़ देंगे, लेकिन पद, प्रतिष्ठा, लाभ जो है उसको नहीं छोड़ सकते। अरे उसने मुझे दंडवत नहीं किया, मुझे माला नहीं पहनाई, हाँ मैं बीच में गुजर रहा था, सबने दंडवत किया लेकिन उसने दंडवत नहीं किया, कष्ट होता है मन में बहुत। तो हम लोगों को ये सारे भगवान के द्वारा फेंके गए जो खिलौने हैं उसको निग्लेक्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि हमको ये खिलौने नहीं चाहिए, हमको लाभ चाहिए। फिर वो भी नहीं आएंगे शायद कई दिन तक, कई समय तक, कई वर्षों तक, लेकिन उनके लिए ही आशा करनी चाहिए केवल बस, कि आपकी संतुष्टि, आपकी सेवा, आपकी समाधान, यही हमको चाहिए। उसी में हमारा समाधान है जिसमें आपका समाधान है। हाँ, तव इच्छा कर, मत करो ये जतन, केवल आपके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा जीवन केवल आपके लिए है, हमें सुख मिले ना मिले, आपका सुख ही हमारा जीवन का इष्ट है, ये हमारी सेवा का सार है। और मैं आपको सबको, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग ऐसी सेवा करने में सफल हो जाएं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।